ओम शांति। आज का क्वेश्चन आंसर का जो प्रश्न है वो है कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव को कैसे बढ़ाएं। अव्यक्त स्थिति का अनुभव को कैसे बढ़ाएं? तो ये इसका जो उत्तर है वो 7 जून 1970 के मुरली से दिया गया है और इसमें बाबा ने अव्यक्त स्थिति के फायदे और उस स्थिति में कैसे स्थित रहना है उसकी विधि, और अगर अव्यक्त स्थिति में नहीं रहेंगे तो उससे होने वाले जो नुकसान है वो बातें बताई है। फिर बाबा ने इस अव्यक्त स्थिति को पाने के लिए व्यक्त दुनिया के उदाहरण भी दिए हुए। फिर बाबा ने कुछ हमारे जो सतयुगी संस्कार है उनके बारे में भी बताया कि आप ऐसे थे, माना जैसे कोई योद्धा होता है, सैनिक होते हैं, तो उन सैन्य को उनका सेनापति जैसे कि मोटिवेट करता है कि आपको ये करना है। उसी तरह आज बाबा इस अव्यक्त स्थिति को कि प्रैक्टिकल अनुभूति कैसे करनी है वो बाबा ने आज बताया है। तो इस प्रश्न के उत्तर को जब हम पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें 12 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए उन कौन कौन सी स्थितियों में से जाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है जो बाबा ने दिया हुआ है कि एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। तो ये जो लाइन्स है ये बताती है कि हमें कौन सी स्थिति धारण करनी पड़ेगी। पहले तो साक्षी स्थिति, साक्षी होके देखना पड़ेगा अपने आप को भी कि हम कहाँ कहाँ व्यक्त में जा रहे हैं और कहाँ कहाँ अव्यक्त में आने की आवश्यकता है। तो पहली जो स्थिति है कौन सी? साक्षी स्थिति। तो ऐसे एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। अव्यक्त स्थिति से हमारे सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। अव्यक्त स्थिति से क्या होता है कि मेहनत कम होती है और प्राप्ति अधिक होती है। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती है, इसलिए अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है। जैसा बाप है वैसे बच्चे, यह स्लोगन याद रखो। अंतर न हो, लौकिक में भी कहते हैं ना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि इस स्लोगन को भूलना नहीं है, इस स्लोगन को याद रखना है और अंतर न हो, बाप समान बनने में कोई अंतर न हो, सामने बाप हो। तो बाबा ने इस अंतर को मिटाने की एक युक्ति बताई है कि अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। ये जो अंतर है इस अंतर को मिटाने के लिए बाबा ने कहा कि पहले अंतर्मुखी होना पड़ेगा। तो बाप कब निराश होते हैं? बाबा तो कभी निराश नहीं होता है। या परिस्थितियों से घबराते हैं? तो बच्चे क्यों घबराते हैं? माना ये अव्यक्त स्थिति जो है, परिस्थिति छोटी है या बड़ी है, इसमें हमें बिल्कुल ही हलचल में नहीं आना है। तो जैसे कि आज दादा विश्व रतन, उनका दिन है आज ही के दिन 2007 में 26 फरवरी को दादा ने शरीर छोड़ा था। तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण उनका बताते हैं कि सभी मधुबन वाले बताते हैं कि दादा कैसे हिस्ट्री हॉल में योग कराते थे। दादा की जो स्थिति थी वो उनके चाल चलन से स्पष्ट दिखाई देती थी, उनके नयनों से स्पष्ट दिखाई देती थी कि परिस्थिति बड़ी हो या छोटी हो, वो किसी मनुष्य से हो या प्रकृति से हो। तो कल ही एक मधुबन के भाई सुना रहे थे कि सब मुरली के लिए जा रहे थे, तो दादा भी मुरली के लिए निकल पड़े और अचानक आसमान में, कोई बारिश का मौसम नहीं था, अचानक बूंदे गिरने लगी। तो जैसे ही अचानक बूंदे गिरती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत इधर उधर भागते हैं, या वो बूंद अपने ऊपर ना गिरे इसलिए कहीं साइड में हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि दादा की जो स्थिति थी, दादा की जो चाल थी, उसमें कोई अंतर नहीं आया। बूंदे गिर रही है और लोगों की, बाकी जो लोग थे उनकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन दादा बिल्कुल अपनी ही स्पीड से आगे जा रहे हैं। तो माना ये अवस्था ऐसी है कि हर एक्टिविटी में कैसे रहेंगे, एक रस रहेंगे और हलचल में नहीं आएंगे। तो ये था कि एक प्रैक्टिकल उदाहरण। तो उन्होंने कहा, मैंने दादा, मेरे पास तो छतरी थी, तो उन्होंने कहा कि मैं छाता लेके दादा के पास गया और दादा को पूछा, दादा सब भाग रहे हैं, आप क्यों धीरे धीरे चल रहे हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये भी देहभान है, क्या होगा, ये भी देहाभिमान है कि दो बूंदे अगर गिरती है सर पर तो क्या होगा उससे, हम अपनी स्थिति क्यों हलचल में लाए। तो अव्यक्त स्थिति माना इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि हमें कितना उस स्थिति में स्थित होना पड़ता है। तो बाप कभी हलचल में आते हैं, परिस्थितियों से घबराते हैं, तो फिर बच्चे क्यों घबराते हैं? ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा, ब्रह्मा बाबा को भी देखा, आदि रत्नों को भी देखा, कभी उनका घबराहट का रूप देखा? सुनाया था ना कि सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है, कोई मुश्किल नहीं है, स्नेही को सुदबुद्ध रहती है। अगर आपस में स्नेह है तो उनको कोई सुदबुद्ध नहीं रहती है। जब अपने आप को मिटा ही दिया है तो फिर मुश्किल क्यों? अपने आप को ही मिटा दिया तो मिटा दिया ना, जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं। जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना। इस देह को हम जैसे इस देह और देह की दुनिया को मिटाते जाएंगे, वैसे उस अव्यक्त रूप से हमारा जो मेल है वो बढ़ता जाएगा, हम मिलते जाएंगे। अगर मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन न मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कब मिलन होगा? अब बात चल रही है अव्यक्त स्थिति की और बाबा उदाहरण दे रहे हैं डायरेक्ट मेले का कि जहां तो इतना शोर होता है, मेला कहते ही कितनी सारी बातें हमारे आंखों के सामने आ जाती है, कितना आवाज ही आवाज होता है, शोर ही शोर होता है। लेकिन उस दुनियावी मेले की बात नहीं है, तो इस परमात्मा मिलन मेला जो इस संगम युग पर लगा हुआ है, और हमें किससे मिलन मनाना है, उससे अभी हम मिलन नहीं मनाएंगे, और अगर ये मेला समाप्त हो जाएगा तो बाबा पूछ रहे हैं कि आप मिलन कब मनाएंगे? स्नेह को समानता में बदली करना है। अगर बाप से स्नेह है तो समानता भी चाहिए, बाबा ने कहा। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। यहाँ कोई दिखावा तो नहीं है, डेकोरेशन भी नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा स्नेह में दिखावा नहीं, स्नेह गुप्त होगा और समानता में प्रत्यक्षता होगी। समानता में हम जितना जितना बाबा के जाएंगे उतना आपे ही समानता प्रत्यक्ष होगी। सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। तो क्या सभी हमारे अंदर समाया हुआ है? हाँ, बाप के गुण, बाप की शक्तियां, बाप की विशेषताएं। तो यह सभी समाया हुआ है, सिर्फ प्रत्यक्ष करना है। अपने कल्प पहले के समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है। कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद आता है ना? बाबा पूछ रहे हैं कि कल्प पहले भी हमें यह सफलता मिली थी, इस स्वरूप को आप देखो। अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। तो यहाँ बाबा फिर दूसरा एग्जाम्पल दे रहे कि जैसे लौकिक में घर सजाने के लिए लोग कितना इंटीरियर डिजाइनर को बुला के, इंटीरियर इंजीनियर को बुला के कितना खर्चा करते कि ये चीज कहाँ रखनी है, ये यहाँ होना चाहिए, वो वहां होना चाहिए। स्थूल में डेकोरेशन को कितना महत्व देते हैं और उसमें कौन सी विशेष चीज बाबा ने बताया कि अपने बचपन से लेकर जो यादगार है, खिलौने है या बचपन के फोटोज है, उससे क्या करते हैं, घर को सजाते हैं और उनको देख के उनको वो स्मृतियां याद आती है। फिर अपने पूर्वजों के पूर्वज भी होते हैं कि हमारे दादा परदादा क्या थे, सेना में थे, तो उनकी क्या रखेंगे, गन रखेंगे, या उन्होंने शेर का अखेट किया था, तो वो सब है ना, हिस्टोरिकल जो चीजें हैं, उनके मेडल्स होते हैं, वो शोकेस में सजा के रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार। तो अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की स्मृति है ना। बाबा ने कहा कि आपको बाहर कुछ लगाना नहीं है फोटो निकाल के आपने, लेकिन क्या करना है, अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर के शोकेस के अंदर क्या करो, अपनी संपूर्ण मूर्ति, भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्तियां स्पष्ट रूप में सामने रखो। फिर कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। अपना ही रूप बाबा ने कहा इतना क्लियर हो, 21 जन्मों की जो अपनी मूर्तियां है उसको सजाओ और उस शोकेस में रखो। माना किसी भी घर में हमें पाव रखते ही पता चलता है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर कोई कांग्रेसी होगे तो क्या रखा होगा, चरखे का चित्र होगा, गांधी जी का चित्र होगा, है ना। अगर कोई इतिहास में देखते हैं शिवाजी महाराज है, महाराणा प्रताप है, तो उनके घरों में उनके चित्र लगाए हुए होंगे। तो बाबा ने हमें याद दिलाया है कि अव्यक्त स्थिति का अनुभव आपको बढ़ाना है तो दो बातें बाबा ने, दो एग्जाम्पल दिए, एक तो मेले का दिया और एक तो अपने भविष्य 21 जन्मों का। इस मेले का उदाहरण क्या दर्शाता है, बाप और बच्चों का मिलन, अव्यक्त फरिश्ता रूप बाबा ने याद दिलाया, और दूसरा अपना दैवी रूप याद दिलाया। तो अभी इस अव्यक्त स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी स्थितियों से हमें गुजरना पड़ेगा, तो हम शॉर्ट में उन स्थितियों को देखेंगे। कि पहली स्थिति जो है कि साक्षी स्थिति। अगर हमें अव्यक्त स्थिति या फरिश्ता स्थिति प्राप्त करनी है, उसका अनुभव बढ़ाना है, तो पहली स्थिति होंगी साक्षी दृष्टा स्थिति। साक्षी दृष्टा अर्थात न्यारा होकर हरेक के पार्ट को देखना, खुद के पार्ट को भी और हरेक के पार्ट को भी। शरीर से न्यारे होकर, कर्मेंद्रियों से कर्म कराते, स्वयं को इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट धारी समझकर पार्ट बजाना, यही है साक्षी दृष्टा स्थिति। साक्षी माना साथीपन, कि बाबा मेरे साथ है। यह बाबा मेरे साथ है इस विशेषता से ड्रामा के हर पार्ट बजाने से टेंशन मुक्त बन जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। फिर दूसरी जो स्थिति है वो है विश्व कल्याणकारी स्थिति। तो विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है। तो अगर हमारा परिवार है, हम बेहद के बाप के बेहद के बच्चे हैं, तो हम क्या है, बेहद के परिवार के हैं। इसलिए हम रहम दिल बन सर्व आत्माओं के कल्याणकारी बनेंगे। और कौन सी स्मृति बाबा ने याद दिलाई कि हम कौन है, बालक सो मालिक है। अगर हम उस बालक, उस परमपिता परमात्मा के बालक है, तो हम कौन है, विश्व कल्याणकारी है, ये स्मृति रहेंगी। तीसरी जो स्थिति है विघ्न विनाशक स्थिति। तो बाबा ने याद दिलाया कि आपके यादगार है, जैसे विघ्न विनाशक किसको कहा जाता है, श्री गणेश को। तो अगर यह स्थिति हमने धारण की हुई है विघ्न विनाशक, तो जिसका यादगार आज भी भक्ति मार्ग में है, हाँ, तो एक तो खुद कैसे होंगे, विघ्नों से प्रूफ होंगे, तभी तो दूसरों के विघ्न हर सकेंगे। और साथ साथ क्या होगा, उसके पास अस्त्र शस्त्र होंगे, कौन से, अष्ट शक्तियों के अस्त्र शस्त्र होंगे, शस्त्रधारी होंगे। अगर हम विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित है, तो क्या है कि माया रूपी शेर आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास योग की अग्नि है, तो माया रूपी शेर आ ही नहीं सकता। अगला चौथा जो है बेहद के वैराग्य की स्थिति। तो बेहद का वैराग्य अर्थात राज ऋषि, जो दो लक्ष्य बाबा ने अभी अभी दिए हैं कि भविष्य 21 जन्मों का भी और अभी का भी, ऋषि का भी जो हमारा रूप है, ज्ञान और योग का भी, जो जिसके द्वारा हमें बेहद का वैरागी बनते हैं, ऋषि बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि जैसे प्रैक्टिकल में हम देखते हैं साधु सन्यासी है जंगल में, अभी अभी गुफा में से तपस्या करके आए हुए हैं और हमारे सामने हैं, तो जरूर उनके हमें क्या दिखाई देगा, उनकी वो अंतर्मुखता की स्थिति से वो अभी अभी बाहर आ रहे हैं, ये अनुभूति होगी। और क्या अनुभव होगा, उनकी वो रूहानियत, तो वैसे भी हाँ पावर अनुभव होगी। तो वैसे ही बाबा ने कहा आपको भी उस अंतर्मुखता की गुफा से ऐसे लगे, सामने वाले को ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव हो कि अभी अभी ये अंतर्मुखता की गुफा से निकले हैं, हाँ कई और दुनिया से आए हैं, वो रूहानियत हमारे में से दिखाई दे, वो तपस्वी रूप दिखाई दे। अगला है रहम दिल की स्थिति। हमें खुद पर रहम करना है और औरों को, दूसरों पर भी रहम करना है। छठी है स्थिति दानी महादानी वरदानी स्थिति। दानी महादानी और वरदानी स्थिति, अगर हम इष्ट देव इष्ट देवी हैं, तो देवताओं के देवता माना सदैव देना, हाथों में सिर्फ शस्त्रास्त्र ही नहीं है तो उनका दातापन भी है, उनके नयनों से भी और उनके चेहरों से भी। तो हमें दानी महादानी और वरदानी स्थिति को प्राप्त करना होगा, तभी जाके हम अव्यक्त स्थिति फरिश्ता स्थिति तक पहुंचेंगे। फिर है सातवीं स्थिति निर्माण नम्रचित और निर्वाण स्थिति। निर्माण का अर्थ यहाँ पे बताया कि नम्रचित, नम्रता भी होनी चाहिए और निर्वाण अर्थात तो वाणी से परे भी स्थिति होनी चाहिए। आठवीं है शुभ चिंतक स्थिति, सदैव कौन सी भी परिस्थिति आए लेकिन हमारी जो चिंतन है उसमें बाधा न आए, जो शुभ चिंतन की जो बहती धारा है उसमें कोई कमी न हो। अगर हम शुभ चिंतक होंगे तो बिजी रहेंगे और इजी भी रहेंगे। अगली स्थिति है खुशनुमा स्थिति। ये भी सबसे बड़ी स्थिति है कि दुनिया ढूंढती है ऐसे चेहरों को, ऐसी स्थिति वालों को, क्योंकि जैसे कल भी सुना कि अचल स्थिति है, हलचल वाली स्थिति है, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी होगी कि टेम्पररी वो आत्माएं आपके पास आई और उन आत्माओं को क्या मिल जाएगा, खुशी मिल जाएंगी कि जो दुनिया में आवश्यकता है, प्रैक्टिकल है। अगर हम ज्ञान सुनाने लगेंगे तो वो सुनने की उनमें ताकत ही नहीं है। बस हमारी स्थिति ऐसी हो, खुशनुमा स्थिति, जो प्रैक्टिकल इस चेहरे द्वारा दिखाई दे। हाँ, आर्टिफिशियल खुशी के बहुत सारे साधन है दुनिया में और वो उसका यूज भी करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, थोड़ी देर की खुशी और थोड़ी देर के बाद फिर गम में चले जाते हैं। तो हमें जो खुशी का सागर मिला है वो खुशनुमा स्थिति अगर हमारे से उनको दिखाई देगी तो वो आपे ही दुनिया वाले आत्माएं आकर्षित हो जाएंगी और नजदीक आएंगे। दसवीं स्थिति है बीज रूप स्थिति। उसका लिए बाबा ने इसमें बताया था कि मिटा दिया ना, अपने आप को मिटा दिया, तो शरीर को मिटा दिया तो बच गया एक बीज। और इस बीज रूप में हम जब ऊपर जाएंगे और ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये विश्व भी कैसे छोटा बॉल की तरह दिखाई देगा, खिलौने की तरह दिखाई देगा। तो बीज रूप स्थिति में स्थित होने के लिए हमें खुद को मिटाना पड़ेगा। ये विधि बाबा ने इस मुरली में बताई थी कि मिटा दिया ना, जो मिट जाते हैं वह जल जाते हैं, जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना, उतना ही हम अव्यक्त रूप से मिलते जाएंगे। कर्मातीत स्थिति, ग्यारहवीं स्थिति है कर्मातीत स्थिति, कि कर्म करते हुए भी कर्म से अतीत, उसका फल क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, उसके बारे में, हाँ, उसके प्रभाव से भी मुक्त, और उससे अगला रिजल्ट क्या आएगा उससे भी मुक्त, क्योंकि करण करावन हार मेरे से करा रहा है, ये स्मृति होगी तो अभिमान से भी मुक्त होगे। तो कर्मातीत स्थिति के बाद फिर बारहवीं स्थिति है अव्यक्त स्थिति और फरिश्ता स्थिति। अगर हम इन ग्यारह स्थितियों से गुजरेंगे, उसके अनुभवी बनेंगे, तो ये जो बारहवीं स्थिति है अव्यक्त स्थिति, जिसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति, उसमें हम ज्यादा समय तक टिक सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।